प्रिय श्रोताओं नमस्कार। बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन लेकर हम आपकी सेवा में उपस्थित हैं और आशा करते हैं कि आप सब भी हमारे साथ आज का बाइबल अध्ययन करने के लिए तैयार हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के पुराने नियम में से यशाया नामक पुस्तक का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर रहे हैं और इसका मुख्य विषय है मसीह का आगमन और छुटकारा। प्रिय श्रोताओं, हमें विश्वास है कि इस बाइबल अध्ययन के द्वारा आपको आत्मिक लाभ मिल रहा है। लीजिए, प्रस्तुत है ये बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूँ और मुझे आशा है कि आप सब भी परमेश्वर की निकटता में रहते हुए कुशल पूर्वक हैं और हमेशा की तरह आज फिर से परमेश्वर के वचन में से सुनने और सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मैं आप सभी श्रोता मित्रों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं और विशेष करके अपने उन सभी नए मित्रों का जो आज पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम इन दिनों बाइबल में से यशाया नामक पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं और पिछले अध्ययन में हम देख रहे थे कि परमेश्वर किस प्रकार से इस पृथ्वी पर अपने शांतिपूर्ण राज्य को स्थापित करेगा। तो मेरे मित्रों, इससे पहले कि आज हम सब आगे बढ़ें और अध्ययन करें, आइए हम प्रार्थना करें और परमेश्वर से अध्ययन के लिए सहायता मांगें। हमारे जीवित और सामर्थी और दयालु पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए जिसे आपने हम सबके जीवन में दिया है ताकि हम आपके वचन को रेडियो के माध्यम से सुन सकें, सीख सकें और उसके द्वारा अपने जीवन में आशीषों को प्राप्त करें। हमारी विनती है हर एक व्यक्ति के लिए जो इस समय रेडियो के सामने बैठे हैं, पिताजी हर एक को अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान करें ताकि आज जो वचन हम सीखते हैं प्रत्येक के जीवन में कार्य करने पाए। हमारी प्रार्थना उन भाई बहनों के लिए है जो बीमार अवस्था में हैं, निराश हैं, चिंतित हैं या किसी प्रकार के तनाव और दबाव में हैं, कष्ट में हैं। पिताजी आप उनकी सुधि लें, उनकी भी सहायता करें। इस वचन पर हम आपके आशीष मांगते हैं, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे मित्रों, हमने जैसा पिछले अध्ययन में देखा है कि अंधकार के बाद, कष्टों के बाद ज्योति चमकी, प्रभु राज का आनंद प्रकट हुआ, यहोवा के छुड़ाए हुए लोग लौटकर जय जयकार करते हुए सियोन में आएंगे और उनके सिर पर सदा का आनंद होगा, वे हर्ष और आनंद पाएंगे और शोक और लंबी सांस का लेना जाता रहेगा। अब हम यशाया की पुस्तक के दूसरे मुख्य भाग में आते हैं और यह भाग उपरोक्त और आने वाले भागों से भिन्न है। इसमें भविष्यवाणी का उच्च स्तर छोड़कर यशाया इतिहास के अभिलेख तक उतर आता है, भाषा की काव्य रूप से हटकर गद रूप धारण कर लेती है। पहले भाग में परमेश्वर की व्यवस्था तथा दंड देने का तरीका दिखाया गया है। अंतिम भाग में हम परमेश्वर का अनुग्रह देखेंगे अर्थात दंड के स्थान पर उद्धार देखेंगे। इन दो भागों के बीच यह चार अध्यायों का अंतराल ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य है। अब प्रश्न यह है कि इस अंश को यहां क्यों रखा गया है? यह एक तार्किक प्रश्न है और एक ईमानदार खोजी को प्रतिफल प्रदान करता है। यहां अनेक महत्वपूर्ण कारक हैं जिनका उल्लेख करना उचित होगा। आइए हम देखें, सबसे पहला, धार्मिक इतिहास और लौकिक इतिहास में अंतर है। एफसी जेनिंग्स का कहना है, दिव्य इतिहास मात्र इतिहास नहीं है, अर्थात वह केवल पूर्व काल की घटनाओं का सच्चा विवरण नहीं है। इसका अर्थ यह हुआ कि धार्मिक इतिहास में अनेक आत्मिक तथ्य छिपे होते हैं जो केवल विश्वास की आंखों से देखने को मिलते हैं। अतः आवश्यक है कि पवित्र आत्मा हमें सिखाए कि धार्मिक इतिहास रचने में आत्मिक तथ्य क्या है। मैं इस विषय में कुछ प्रस्तावित कारणों पर ध्यान देना चाहता हूं। तो सबसे पहली कारण यह है कि ये घटनाएं एक आम इतिहासकार के लिए ये घटनाएं साधारण प्रतीत होंगी, परंतु परमेश्वर की प्रजा से संबंधित घटनाएं स्वर्ग के मानदंड के लिए महत्वपूर्ण है। दूसरा है, इन अध्यायों में विश्व शक्ति असुरों के हाथ से निकलकर बेबीलोन के हाथ में आती है। बेबीलोन सर्वप्रथम महान विश्व शक्ति हुआ जो परमेश्वर के प्रजा के लिए भय का कारण था। बेबीलोन को यह युग आरंभ करना था जिसे हमारे प्रभु यीशु ने लूका रचित सुसमाचार 21 अध्याय उसके 24 पद में अन्य जातियों का समय कहा है। अब हम तीसरी बात देखते हैं कि इस भाग में दाऊद की संतान का उल्लेख है जो बैरियों से घिरा हुआ था और लगभग मृत्यु के मुंह में चला गया था, परंतु चंगाई पाकर फिर राज करने लगा। यह परमेश्वर के उस महान पुत्र का प्रतीक है जिसे बैरियों ने पीड़ित किया और मृत्यु के मुंह में डाल दिया, परंतु वह मृतकों में से जी उठा और पृथ्वी पर राज्य करने फिर से आएगा। हिजकिया एक ऐसा राजा था जो राजा दाऊद के चरण चिन्हों पर चलता था। वह एक दुर्बल चरित्र का राजा था, वह निर्बुद्धि के काम करता था, और हमारा प्रभु यीशु तो दाऊद से भी महान था और क्रूसित एवं पुनर्जीवित मसीह होने के कारण हमारे लिए। पहला कुरिन्थियों की पत्री 1 अध्याय उसके 30 पद के अनुसार हमारे लिए ज्ञान ठहरा, अर्थात धर्म और पवित्रता और छुटकारा। इस अध्याय की रूपरेखा में अन्य अनेक आत्मिक तथ्य भी प्रकट हैं। अब हम अपने मुख्य दूसरे पॉइंट पर आते हैं। इस ऐतिहासिक अंश में दूसरा महत्वपूर्ण कारक है कि ये मुख्य घटनाएं धर्मशास्त्र में 3 बार व्यक्त की गई हैं। दूसरे राजाओं की पुस्तक 18 और 19 अध्याय, दूसरे इतिहास की पुस्तक 29 और 30 अध्याय, और यशाया की पुस्तक के इस भाग में। यह तथ्य कि पवित्र आत्मा ने इसे धर्मशास्त्र में 3 बार लिखना चाहा, अपने आप में एक महान महत्व का कारण है। ये विवरण एक रूप में तो नहीं है, परंतु घटनाएं एक ही हैं। कुछ विद्वानों के विचार में यशाया इन तीनों का लेखक है, या कम से कम राजाओं के विवरण में उसी ने लिखा है। निश्चय ही पवित्र आत्मा के पास हमारे लिए यहां कुछ विशेष आत्मिक सत्य हैं, अतः हमें इन्हें महत्वहीन समझकर अनदेखा नहीं करना है। हम तीसरी बात देखते हैं। इस संक्षिप्त भाग में 3 महत्वपूर्ण विस्मयकारी घटनाएं हैं जिसको हम लोग देखेंगे। 1 के रूप में मृत्यु का स्वर्गदूत 185,000 अशुर सैनिकों को मार डालता है। इसे हम यशाया की पुस्तक 37 अध्याय उसके 36 से 38 पद में पढ़ते हैं। और बी में हम देखते हैं आहाज की धूप घड़ी में सूर्य 10 अंश पीछे हट गया था, यशाया 38 अध्याय उसके 7 और 8 पद में है। और सी में देखते हैं परमेश्वर हिजकिया को चंगाई देकर उसे 15 वर्ष जीवन दान देता है, इसे हम यशाया 38 अध्याय उसके 1 से 5 पद में देखते हैं। और हम फिर से चौथी मुख्य बात में आते हैं। यह भाग अश्शूरों का उल्लेख करते हुए आरंभ होता है और बेबीलोन के उल्लेख के साथ समाप्त होता है। हिजकिया ने 2 महत्वपूर्ण पत्र प्राप्त किए थे। पहला पत्र अश्शूरों का था जिसे हिजकिया ने परमेश्वर के समक्ष रख दिया था। परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना सुनकर उसकी प्रजा का उद्धार किया था। यशाया की पुस्तक 37 अध्याय उसके 19 और 20 पद में हम इसे देखते हैं। और तब दूसरा पत्र बेबीलोन के राजा का था जिसे पढ़कर वह फूल गया। उसने यह पत्र परमेश्वर के सामने प्रार्थना में नहीं रखा था। इसका परिणाम यह हुआ कि यहूदा लूट लिया गया। यशाया 39 अध्याय उसके 1 से 8 पद में हम इसे देखते हैं। तो मेरे मित्रों, अध्याय 36 में हिजकिया के बारे में और अश्शूरी सन्हेरीब के आक्रमण के बारे में वर्णन करता है। अध्याय 37 में हिजकिया की प्रार्थना और अश्शूरों की सेना के विनाश का वर्णन है। और तब अध्याय 38 में हिजकिया के रोगी होने, उसकी प्रार्थना और उसकी चंगाई का वर्णन है। और अध्याय 39 में हिजकिया की मूर्खता का प्रदर्शन है। तो आइए अब हम आगे बढ़ें और अध्याय 36 और 37 से हम देखेंगे, जिसका विषय है 36 अध्याय में हिजकिया और अश्शूर। अश्शूरों का राजा सन्हेरीब उत्तर दिशा से बाढ़ के समान आता है और अपने मार्ग में आने वाले प्रत्येक देश को ध्वंस करता जाता है। विजय की पताका फहराता हुआ वह यरूशलेम की दीवार पर आ पहुंचा है। मेरे मित्रों, उससे बड़ा आश्चर्य हुआ कि हिजकिया समर्पण के लिए तैयार नहीं है। वह सोचने लगा कि हिजकिया के पास कोई विशेष गुप्त हथियार है। उसका प्रतिनिधि रबशाके यहूदा का ठट्ठा करता है कि उन्हें कोई नहीं बचा सकता। वह बड़े घमंड से उन्हें समर्पण की धमकी देता है। अध्याय के अंत में हिजकिया के पास अश्शूरों की धमकियों और शर्तों का समाचार आता है। अश्शूर यरूशलेम पर आक्रमण करने की धमकी देता है। आइए हम पढ़ें यशाया के पुस्तक 36 अध्याय उसके एक पद में लिखा है, हिजकिया राजा के 14वें वर्ष में अश्शूर के राजा सन्हेरीब ने यहूदा के सब गढ़ वाले नगरों पर चढ़ाई करके उनको ले लिया। मेरे मित्रों, आपको स्मरण होगा कि यशायाह ने भविष्यवाणी की सेवा उस समय आरंभ की थी जब राजा उज्जियाह की मृत्यु हो गई थी और योताम, आहाज और अब हिजकिया के राज्यकाल तक वह सेवा करता आ रहा है। हिजकिया यहूदा के महान पांच महान राजाओं में से एक था, आसा, यहोशापात, योआस, हिजकिया और योशिय्याह। यहूदा राज्य में जागृति आई थी। हिजकिया एक महान राजा था। दूसरे इतिहास की पुस्तक उसके 29 अध्याय और उसके एक और दो पद में लिखा है, जब हिजकिया राज्य करने लगा तब वह 25 वर्ष का था और 29 वर्ष तक यरूशलेम में राज्य करता रहा। उसकी माता का नाम अबियाह था जो जकर्याह की बेटी थी, जैसे उसके मूल पुरुष दाऊद ने किया था, अर्थात जो यहोवा की दृष्टि में ठीक था वैसा ही उसने भी किया। यद्यपि हिजकिया एक अच्छा राजा था, उसने सन्हेरीब को रिश्वत अर्थात घूस देने में अपनी दुर्बलता का प्रदर्शन किया है। वह चाहता था कि किसी प्रकार यरूशलेम अश्शूरों के आक्रमण से बच जाए। आप देख सकते हैं दूसरे राजाओं की पुस्तक 18 अध्याय उसके 13 से 16 पद में, उसने अश्शूरों के राजा की बहुत बड़ी मांग को पूरा करने के लिए मंदिर का सोना चांदी उतरवा लिया था, परंतु शहरपनाह के बाहर खड़ी विशाल सेना के उपस्थिति के कारण यह प्रयास व्यर्थ था। उस युग में वरन आज भी यह नीति प्रचलित है, आप पैसे से मित्र नहीं खरीद सकते। हमारी समस्या है कि हमने सच्चे मित्र पहचानना नहीं सीखा है। अंत में हिजकिया को परमेश्वर की शरण ही आना पड़ा। यशाया की पुस्तक 36 अध्याय के दो पद में लिखा है, अश्शूर के राजा ने रबशाके को बड़ी सेना देकर लाकिश से यरूशलेम के पास हिजकिया राजा के विरुद्ध भेज दिया और वह ऊपरी पोखरे की नहर के पास धोबियों के खेत की सड़क पर जाकर खड़ा हुआ। सन्हेरीब ने व्यक्तिगत रूप से आने का अनुग्रह करने की अपेक्षा रबशाके के नेतृत्व में विशाल सेना भेज दी। वे यरूशलेम के शहरपनाह के बाहर शिविर डालकर हिजकिया को डरा रहे थे, प्रजा को आतंकित कर रहे थे कि वे समर्पण कर दें। हिजकिया ने रबशाके से भेंट करने के लिए एक प्रतिनिधि मंडल भेजा। तब हम पढ़ते हैं यशाया 36 उसके 3 पद में लिखा है, तब हिल्कियाह का पुत्र एलियाकीम जो राज घराने के काम पर नियुक्त था और शेबना जो मंत्री था और आसाप का पुत्र युवाह जो इतिहास का लेखक था, ये तीनों उससे मिलने को बाहर निकल गए। हिजकिया ने इन 3 प्रतिनिधियों को भेजा कि सन्हेरीब की शर्तों को स्वीकार करें। मेरे प्रियो, हम आगे देखते हैं कि अश्शूरों द्वारा यरूशलेम के समर्पण की मांग। यशाया 36 के 4 पद में लिखा है, रबशाके ने उससे कहा, हिजकिय्याह से कहो, महाराजा धीराज अशुर का राजा यूं कहता है कि तू किसका भरोसा किए बैठा है। रबशाके बड़े घमंड से आश्चर्य व्यक्त करता है कि हिजकिय्याह के प्रतिरोध का कारण क्या है। उसके विचार में वह मिस्री था। यशाया 36 अध्याय के 6 पद में लिखा हुआ है, सुन, तू तो उस कुचले हुए नरकट अर्थात मिस्र पर भरोसा रखता है, उस पर यदि कोई टेक लगाए तो वह उसके हाथ में चुभ कर छेद कर देगा। मिस्र का राजा फिरौन उन सब के साथ ऐसा ही करता है जो उस पर भरोसा रखते हैं। मेरे मित्रों, उस समय अशुरों की सेना मिस्र के विजय के अभियान पर अग्रसर थी। उनकी अप्रसन्नता का कारण था कि यरूशलेम उनके मार्ग की बाधा था, और सच तो यह था कि हिजकिय्याह ने अपने पिता की नाई मिस्र से सहायता मांगी थी, परंतु हिजकिय्याह को मिस्र से सहायता नहीं मिली। इस विचार में रबशाके सही था। वह एक असंभावना की भी कल्पना करता है। यशाया 36 अध्याय के 7 पद में लिखा है, फिर यदि तू मुझसे कहे कि हमारा भरोसा अपने परमेश्वर यहोवा पर है, तो क्या वह वही नहीं है जिसके ऊंचे स्थानों और वेदियों को ढाकर हिजकिय्याह ने यहूदा और यरूशलेम के लोगों से कहा कि तुम इस वेदी के सामने दंडवत किया करो। क्या तुम सच में अपने परमेश्वर पर भरोसा रखते हो? यहां उसका आत्मिक विवेक उसे अनुचित संकेत देता है। क्या वह वही नहीं जिसके ऊंचे स्थानों और वेदियों को ढाकर, उसकी समझ में ये ऊंचे स्थान और वेदियां यरूशलेम के जीवित परमेश्वर की उपासना के स्थान थे। उसके विचार में हिजकिय्याह ने सब प्रकार की उपासना विधि समाप्त कर दी थी, और अब उनके पास कोई परमेश्वर नहीं था जिससे वे सहायता की याचना करें। मेरे मित्रों, आज अनेक मनुष्यों में आत्मिक विवेक नहीं है। मुझे लोग लिख करके पूछते हैं, सब कलीसियाएं एक हैं, वे सब एक ही स्थान पर पहुंचने के प्रयास में हैं। ये लोग बूढ़े रबशाके के समान हैं, उन्हें अंतर का बोध नहीं है। जब वे कहते हैं कि आपका विश्वास अर्थ नहीं रखता जब तक आपके मन में निष्ठा है, वे प्रभु यीशु की बात का खंडन करते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय उसके 6 पद में लिखा है, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। यह प्रभु यीशु का वचन है जिसका खंडन आज भी लोग करते हैं। हम आगे देखते हैं रबशाके द्वारा व्यक्त तीसरी संभावना अशुरों का घमंड प्रकट करती है। यशाया की पुस्तक 36 अध्याय उसके 8 और 9 पद में लिखा है, इसलिए अब मेरे स्वामी अशुर के राजा के साथ वाचा बांध, तब मैं तुझे 2000 घोड़े दूंगा यदि तू उन पर सवार चढ़ा सके। फिर तू रथों और सवारों के लिए मिस्र पर भरोसा रखकर मेरे स्वामी के छोटे से छोटे कर्मचारी को भी कैसे हरा सकेगा? ध्यान दे, यह तो नहीं हो सकता था कि हिजकिय्याह अपने संसाधनों और शक्ति पर निर्भर यरूशलेम की रक्षा के विषय सोच रहा था। अतः रबशाके के बराबरी के लिए हिजकिय्याह को 2000 घोड़े देने का प्रस्ताव रखता है, जो वास्तव में उसका ठड्ढा करना था। रबशाके के द्वारा चौथी संभावना की भी कल्पना हम देखते हैं, जो उसके धूर्तता का प्रदर्शन है। यशाया के पुस्तक 36 अध्याय के 10 पद में लिखा है, क्या मैंने यहोवा के बिना कहे इस देश को उजाड़ने के लिए चढ़ाई की है? यहोवा ने मुझसे कहा है, उस देश पर चढ़ाई करके उसे उजाड़ दे। वह कहता है कि इसराइल के यहोवा ही ने उन्हें यरूशलेम के विरुद्ध भेजा है, और वह अशुरों के पक्ष में है। इसमें संदेह नहीं कि परमेश्वर ने अपनी प्रजा को दंड देने के लिए अशुरों को साधन बनाया, परंतु वह यरूशलेम उनके हाथ में नहीं पड़ने देगा। यशाया 36 अध्याय के 11 पद में हम पढ़ते हैं, तब एलियाकीम, शोबना और योआह ने रबशाके से कहा, अपने दासों से आरामी भाषा में बात कर, क्योंकि हम उसे समझते हैं। हमसे यहूदी भाषा में शहर पनाह पर बैठे हुए लोगों के सुनते बातें न कर। एलियाकीम, शिबना और योआह रफशाके से कहते हैं कि वह उनसे आरामी भाषा में बात करे। अब तक वह ऊंची आवाज में इब्रानी भाषा बोल रहा था कि यरूशलेम के शहर पनाह पर उपस्थित सैनिक सुने। वह झूठे प्रचार में दक्ष था। दुश्मन सदा ऐसा ही करता है। वह चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था कि सैनिक सुनकर जनता में आतंक फैलाएं। उसका उद्देश्य था कि उसकी आवाज इन प्रतिनिधियों के पास सैनिकों तक पहुंचे। निसंदेह उनका विरोध भी रफशाके को चिल्लाने पर विवश कर रहा था। यशाया की पुस्तक 36 अध्याय उसके 18 से 20 पद में हम पढ़ते हैं, ऐसा न हो कि हिजकिया यह कहकर तुमको बहकाए कि यहोवा हमको बचाएगा। क्या और जातियों के देवताओं ने अपने अपने देश को अश्शूर के राजा के हाथ से बचाया है? हमात और अरपात के देवता कहाँ रहे? सपोएम के देवता कहाँ रहे? क्या उन्होंने शोमरोन को मेरे हाथ से बचाया है? देश देश के सब देवताओं में से ऐसा कौन है जिसने अपने देश को मेरे हाथ से बचाया हो? फिर क्या यहोवा यरूशलेम को मेरे हाथ से बचाएगा? रफशाके बड़े घमंड से कहता है, किसी का भी देवता उन्हें अश्शूरों के हाथ में से नहीं बचा पाया। यहूदावासी क्यों यहोवा की सहायता की बाट जोहते हैं? वह यहोवा को अन्य जाति देवताओं के तुल्य दर्शा रहा था। मेरे मित्रों, प्रतिनिधि अश्शूरों की कठोर शर्तें सुनाते हैं और अंत में प्रतिनिधि मंडल हिजकिया को रिपोर्ट देता है। यशाया की पुस्तक 36 अध्याय के 22 पद में लिखा है, तब हिल्किया का पुत्र एलियाकीम जो राजघराने के काम पर नियुक्त था, और शेबना जो मंत्री था, और आसाप का पुत्र योआह जो इतिहास का लेखक था, इन्होंने हिजकिया के पास वस्त्र फाड़े हुए जाकर रफशाके की बातें कह सुनाई। ध्यान दीजिए, प्रतिनिधि मंडल लौटकर हिजकिया को अपने इस दुखद सुसमाचार को सुनाया। वस्त्र मनुष्य के सम्मान और उसकी महिमा का द्योतक है। कहा जाता है कि वस्त्र मनुष्य का रूप निर्माण करते हैं। वस्त्र फाड़ने का अर्थ है अपमान और लज्जा। अश्शूरों का संदेश लाने वाला यह प्रतिनिधि मंडल निराश एवं हताश है। यह सुनकर हिजकिया की प्रतिक्रिया क्या होती है, अब देखिए समाचार सुनकर यशाया क्या करता है। मित्रों, इसे हम यशाया की पुस्तक 37 अध्याय उसके 1 पद में पढ़ते हैं। लिखा है, जब हिजकिया राजा ने यह सुना तब वह अपने वस्त्र फाड़ और टाट ओढ़कर यहोवा के भवन में गया। ध्यान दीजिए, समाचार सुनकर व्यक्त प्रतिक्रिया एक विश्वासी जन को प्रकट करती है। संकटों की पराकाष्ठा में वह परमेश्वर के पास उसके भवन में जाता है। यशाया के पुस्तक 37 अध्याय के 2 पद में लिखा है, उसने एलियाकीम को जो राजघराने के काम पर नियुक्त था, और शेबना मंत्री को, और याजकों के पुरनियों को जो सब टाट ओढ़े हुए थे, आमोस के पुत्र यशाया नबी के पास भेज दिया। हिजकिया यशाया को संदेश भेजता है। यह उसके विश्वास का दूसरा चरण था। वह परमेश्वर की वाणी सुनना चाहता था। हम पढ़ते हैं यशाया की पुस्तक 37 अध्याय के 3 पद में, उन्होंने उससे कहा, हिजकिया यूं कहता है, आज का दिन संकट और उलाहने और निंदा का दिन है। बच्चे जन्मने पर हुए, पर जच्चा को जनने का बल न रहा। मेरे प्रियो, यशाया को भेजा गया संदेश अशुभ था, निराशा और अंधकार से घिरा हुआ। आज का दिन संकट और उलहना और निंदा का दिन है। तब हम आगे पढ़ते हैं यशाया 37 के 4 पद में, संभव है कि तेरे परमेश्वर यहोवा ने रफशाके की बातें सुनी, जिसे उसके स्वामी अश्शूर के राजा ने जीवते परमेश्वर की निंदा करने को भेजा है, और जो बातें तेरे परमेश्वर यहोवा ने सुनी है उसके लिए उन्हें दपटे। अतः तू इन बचे हुओं के लिए जो रह गए हैं प्रार्थना कर। जी हाँ, तेरे परमेश्वर यहोवा, वह हमारे परमेश्वर यहोवा क्यों नहीं कहता है? पद 20 में वह इसमें सुधार करेगा। मेरे मित्रों, हम यहां पर देखते हैं कि जब हम किसी कष्ट में होते हैं और परमेश्वर की ओर फिरते हैं तो परमेश्वर हमारी सुनता है। यदि हम किसी प्रकार की गलती कर रहे हैं तो क्यों ना हम उससे फिरें और परमेश्वर को उसका स्थान दें। मेरे मित्रों, यहां पर आज हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है। अगले अध्ययन में हम इसके आगे के अध्ययन को पूरा करेंगे। तब तक आप प्रभु की निकटता में बने रहें, उसके वचनों पर मनन करें। प्रभु आप सबको आशीष दे।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। इन्हें प्राप्त करने के लिए आप हमें इस पते पर लिख सकते हैं। कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए। कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। और हमारा दूसरा नंबर है 09651433397। याद रहे 09651433397। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। श्रोताओ, इस कार्यक्रम को आप हमारे वेबसाइट radio882.com पर भी सुन सकते हैं। इस वेबसाइट radio882.com के बारे में अपने मित्रों को भी सूचित कर दें। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
मसीहा के पांव तुम्हें तो हो, मसीहा के पांव तुम्हें तो हो, मसीहा के पांव तुम्हें तो हो, मसीहा के पांव तुम्हें तो हो। कहां जा रहे हो जरा जान लो, मसीहा के पांव तुम्हें तो हो, मसीहा के पांव मसीहा के हाथ तुम ही तो हो, मसीहा के हाथ तुम ही तो हो, मसीहा के हाथ तुम ही तो हो, मसीहा के हाथ तुम ही तो हो। गिरो को उठाओ जरा जान लो, मसीहा के पाओ तुम ही तो हो, मसीहा के हाथ तुम ही तो हो, मसीहा के पांव तुम ही तो हो, मसीहा के हाथ तुम ही तो हो, मसीहा के पांव तुम ही तो हो, मसीहा के हाथ तुम ही तो हो। तुम्हें तो हो, मसीहा की आंखें तुम्हें तो हो, मसीहा की